इनमें से बड़ी बस्तियां चुनफान, काया, नाटवान, धम्मरत, श्रीमान याला, सीलन सिंह, मलक्का, बेलेजली, टकुआ, लानया नाम से प्रख्यात थी। इन क्षेत्रों की खुदाई में जो सामग्री मिली है उससे पता चलता है कि पल्लव और चोल वंश के राजाओं का इस क्षेत्र पर शासन था। इन राजाओं में राजेंद्र का प्रभुत्व था। तब हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी यहाँ भारी प्रसार था। भारतीयों को मलय प्रायद्वीप के संबंध में जानकारी अति प्राचीन काल, संभवतः ईसा युग के पूर्व से अवश्य ही थी।
हिंदुओं ने मलय प्रायद्वीप में कई राज्यों की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कायम हुए थे। इसके संबंध में चीनी विवरण प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त पानपान, फुनन, कमलनका, कलसपुर, कलकेदाह तथा पांग हिंदू राज्य थे। मलय प्रायद्वीप में यद्यपि प्राचीन हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के वास्तविक अवशेष कम मात्रा में प्राप्त हैं, फिर भी उनका बिल्कुल अभाव नहीं है।
गनांगजेराय केदाह शिखर पर्वत की तलहटी में सुंगईबटू राज्य में एक हिंदू मंदिर तथा कुछ पाषाण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र के केदाह में ईंटों से बना हुआ बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है।
संभवतः यह अवशेष चौथी अथवा शताब्दी ईस्वी का है।
इसकी जानकारी उक्त अवशेष के साथ प्राप्त शिलालेखों से होती है। इसी तरह मलाया के उत्तरी भाग में स्थित वेलेसली प्रांत में कुछ बौद्ध मंदिरों के खंभों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी चौथी और पांचवीं शताब्दी ईस्वी के हैं, जिसकी जानकारी इन पर की हुई खुदाई से होती है। सेलेनसिंग पिरक क्षेत्र में सोने का एक आभूषण, जिस पर गरुड़ पर आसीन विष्णु का चित्र अंकित है, प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही एक गड्ढा, जो कि एक गिरे हुए वृक्ष के जड़ से उखड़ जाने से बन गया था, में से एक कार्निलियन सील प्राप्त हुआ है, जिस पर श्री विष्णु वर्मन का नाम पांचवीं शताब्दी ईस्वी की लिपि में खुदा हुआ था। तक्वापक, जिसे पटोलेमी ने टकोला प्राचीन प्रसिद्ध बंदरगाह बतलाया है, के चारों ओर के क्षेत्र में मंदिरों एवं सुंदर मूर्तियों के ध्वंसावशेष कायम हैं। पूर्वी समुद्र तट पर बंदोन की खाड़ी के चारों तरफ चौथी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी काल की प्राचीन बस्तियां, नगरों के खंडहर, विशेषकर प्रसिद्ध क्षेत्र सिया, नखोन, श्रीधम्मरत एवं भीमश्री में मौजूद हैं। इस क्षेत्र बिगोर की मूर्तियां एवं मंदिर कुछ बाद के काल हो सकते हैं, पर लिगोर और तक्वापक तथा सिया के पाषाण खंभों में प्राप्त शिलालेखों से यह प्रकट होता है कि बस्तियां चौथी अथवा पांचवीं शताब्दी ईस्वी के बाद की नहीं है। मलय देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वे संस्कृत भाषा में तथा करीब चौथी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी में प्रचलित भारतीय अक्षरों में लिखे हुए हैं। उनमें से दो शिलालेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार था। केदाह के पास एक मिट्टी की तख्ती प्राप्त हुई है, जिस पर संस्कृत भाषा में तीन पद खुदे हुए हैं।
ये संस्कृत पद संभवतः महायान माध्यमिक शाखा के स्तोत्र के अंश है।
उनमें तीनों संस्कृत पद, जो कि महायान शाखा के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, सगरमति परिपृद्धा के चीनी अनुवाद में उपलब्ध हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मलय में छठवीं शताब्दी ईस्वी में या उसके पूर्व से महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। मलय प्रायद्वीप में बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेखों से यह स्पष्ट रूप में प्रकट है कि भारतीयों ने चौथी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी तक में मलय के उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में हिंदू राज्य कायम किया था और ये भारतीय उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। इन शिलालेखों में से एक शिलालेख में नाविक बुधगुप्त के बारे में उल्लेख है, जो कि रक्तमृतिका का रहने वाला था।
रक्तमृतिका लाल मिट्टी बंगाल में मुर्शिदाबाद से 12 मील दक्षिण में स्थित रंगमाटी ही है। मलय में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डालने वाले उपलब्ध साहित्यिक प्रमाण की पुष्टि मलय प्रायद्वीप में प्राप्त पुरातत्वीय अवशेषों से होती है। टकोल आधुनिक तक्वापक भारतीय यात्रियों का मलय में उतरने का प्रथम स्थान था, जहां से कुछ यात्री पर्वतों को पार कर बिंदोन की खाड़ी मैदानी क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां के भारतीय यात्री भूमि अथवा समुद्री मार्ग से स्याम, कंबोडिया, अन्नम, चंपा और सुदूर पूर्व के देशों में जा सकते थे।
इस भूमि मार्ग पर प्राचीन भारतीय बस्तियों के खंडहर कायम हैं।
दूसरा समुद्री मार्ग भी बहुत लोकप्रिय था और इसका बहुत उपयोग भी होता था।
इस तथ्य की जानकारी बेलेसली प्रांत में उपलब्ध पुरातत्वीय अवशेषों से होती है।
मलय प्रायद्वीप सुदूर पूर्व के भारतीय राज्यों तक पहुंचने के लिए मुख्य द्वार था। मलय प्रायद्वीप में पुरातत्वीय खोज दल की रिपोर्ट हिंदू उपनिवेशीकरण के संबंध में निम्नलिखित है। इन उपनिवेशों की संख्या बहुत थी और ये दूरस्थ केंद्रों जैसे पूर्वी तट में स्थित चुपफोन, सिया बिंदोन नदी की घाटी, नरवोन श्री धम्मरत लिंगोरमल पटनी के पास और सेलेनसिंग पेहिंग में और पश्चिम तट में स्थित मलक्का, वेलेसली प्रांत, तक्वापक और लनय, एवंटन सेरिम नदियों के पश्चिमी तट में बसे हुए थे। इन सबों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नरवोन धम्मरत लिगोर था।
यह वास्तविक रूप में एक बौद्ध उपनिवेश था जिसने संभवतः नरवोन श्रीधम्मरथ का विशाल स्तूप निर्माण करवाया था और साथ ही 50 मंदिरों का एक हिस्सा भी बनवाया था जो कि इस स्तूप के चारों ओर बने हुए हैं।
इसके थोड़ा उत्तर में सिया उपनिवेश स्थित था, जहां पहले ब्राह्मण धर्म और बाद में बौद्ध धर्म प्रचलित था।
प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह मान्यता सही है कि बंदोन की खाड़ी के चारों तरफ के क्षेत्र से भारतीय संस्कृति का प्रसार सुदूरपूर्व के देशों में होता रहा। मलय द्वीप के पश्चिमी तट पर टकुआपा के पास सामान्यतः भारतीय रंग रूप के लोग अभी भी पाए जाते हैं। नरवोन श्रीधम्मरथ और पतलिंग स्थानों पर भी अभी भारतीय वंशज ब्राह्मणों का समाज रहता है, जो कि यह मानता है कि उनके पूर्वज भूमि मार्ग से मलय द्वीप में भारत से आए थे। मलाया में यों इस्लाम धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है।
वहां के सम्राट सुल्तान कहलाते हैं।
सुल्तान के नाम के साथ जुड़ने वाली अनेक उपाधियों में से एक श्री पाटुका भी है।
जिस प्रकार भरत जी राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या के शासन का स्वामी मानते थे और अपने को कार्यवाहक मात्र कहते थे, उसी प्रकार सुल्तान भी राजगद्दी का स्वामी भगवान को मानकर कार्य संचालन करते हैं। यह मर्यादा श्रीपादुका उपाधि में है।
मलाया के मुसलमानों में निकाह तो इस्लामी विधान के साथ ही होता है, पर उस अवसर पर रामायण या महाभारत का कोई अभिनय अवश्य किया जाता है। यदि वैसा न किया जाए तो निकाह पूरा हुआ नहीं माना जाएगा।
यहाँ के इस्लाम धर्मानुयायियों पर भी हिंदू धर्म की छाप अभी भी दृष्टिगोचर होती है।
स्त्रियों में पर्दा बिल्कुल नहीं है। ये कठोर श्रम करती हैं, गृह व्यवस्था को भली प्रकार संभालती हैं और उपार्जन में भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इस देश में जुकस, समांग, सारेसा नामक आदिवासी जातियां भी हैं जो प्रायः जंगलों में रहती हैं। इनकी संख्या अब मात्र 30,000 रह गई है और निरंतर घटती ही जाती है। मलाया में 11% भारतीय, 44% मलाय और 39% चीनी है।
रबड़ तथा खनिज पदार्थ की यहाँ अच्छी पैदावार है। मौसम यहाँ कश्मीर जैसा सुहावना रहता है। वर्षा बहुत होती है।
जमीन उपजाऊ और हरी भरी है।
गन्ना, नारियल, अनन्नास के उत्पादन यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। टीन, गटापारचा, डेमाडरस, सेविया आदि खनिज भी विदेशी मुद्रा उपार्जित करते हैं।
सन 1820 में यहाँ अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया और एक शताब्दी से अधिक यहीं शासन करते रहे।
The 31st of August 1957 को इस देश की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त करती ली। सिंगापुर, सारावान, उत्तरी बोनियो और मलाया को मिलाकर सितंबर 61 से एक संघ बनाया गया जिसका नाम मलेशिया रखा गया।
अब मलाया इसी संघ की एक इकाई है।
मलाया की अधिक प्रामाणिक जानकारी तथा उस क्षेत्र पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का विवरण उपलब्ध करने के लिए इवांस द्वारा संपादित पेपर्स ऑन दी एथनोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी ऑफ दी मलय J0 तक कुसुकृत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडियन एंड दी मलाया आर्चिपिलिगो और क्वारिज कृत आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज आग एंसियंट इंडियन कोलोनाइजेशन पुस्तकें अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। एक विवरण ऐसा भी उपलब्ध है जिसके अनुसार सिंगापुर की स्थापना राजा दलपत सिंह ने की, तभी उनका नाम सिंहपुरा रखा गया, पीछे बदलकर वह सिंगापुर हो गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया का यह सबसे धनी नगर है। वहां का जीवन स्तर यूरोप जैसा ऊंचा है।
यहाँ के भारतीय श्रमिक अपनी ईमानदारी और श्रमशीलता के कारण अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।
सिंगापुर द्वीप का क्षेत्रफल 292 वर्ग मील है। पहले उसमें दलदल और डाकुओं के अड्डे थे।
सन 1819 में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा जमाया।
सर रेफेल्स के तत्वावधान में उसकी सफाई और बसावट का कार्य किया गया।
वहाँ चीनी, मलाय और भारतीयों का बाहुल्य है। सिंगापुर में पर्याप्त संख्या में भारतीय रहते हैं। इनमें एक तिहाई श्रमिक, एक तिहाई दुकानदार और एक तिहाई उच्च सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं और व्यापार करते हैं। अब यहाँ चीनी मूल के लोगों को भारी घुसपैठ हो गई है।
उनकी संख्या 70% तक जा पहुंची है और हिंदुस्तानी 4% रह गए हैं।
यहाँ भारतीयों की लगभग 2 दर्जन संस्थाएं हैं जिनमें इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रमुख है।
11 हिंदू और बौद्ध मंदिर, 4 गुरुद्वारे और लगभग 100 मस्जिदें हैं। कुल जनसंख्या 20 लाख है।
सिंगापुर के करोड़पतियों में भारतीयों की भी गणना है।
रामकृष्ण मिशन यहाँ 50 वर्ष से काम कर रहा है।
उसके 2 भव्य मंदिर हैं,
एक अस्पताल, एक अनाथालय है।
तमिल भाषा के 2 स्कूल भी मिशन की ओर से चले रहे हैं।
सिंगापुर में कस्टम ड्यूटी न लगने के कारण जापान तथा यूरोप अमेरिका की वस्तुएं बहुत सस्ती हैं। पश्चिमी एशिया में भारतीय वर्चस्व। पश्चिमी एशिया के इतिहास की विशद गवेषणा करने वाले यूरोपीय पुरातत्व विज्ञानी एच विलिया परगिट, स्टाना, ग्रीशमान, देरी डोरस आदि ने यह निष्कर्ष निकाला है कि किसी समय यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति से प्रभावित था जिसे वहां तक भारतीय राजाओं तथा धर्म प्रचारकों ने पहुंचाया। महमूद गजनवी के दरबारी लेखक अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में ऐसे हवाले दिए हैं जिनसे ईरान और भारत की घनिष्ठता सिद्ध होती है।
प्राचीन अरब लेखक अल याकूबी ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रो शून्य मकबूल अहमद ने अपनी भारत और अरब संबंधी पुस्तक में पश्चिमी एशिया के शासकों को भारतीय देवी देवताओं की पूजा करने वाला लिखा है।
उन्होंने यह भी लिखा है कि मैड राजाओं ने ईसा से 750 वर्ष पूर्व उत्तरी ईरान पर अधिकार किया, फिर उन्होंने यूनान और मिश्र पर अधिकार किया। इक्ष्वाकू के दामाद क्रुश का ईरान पर शासन था। जिस व्यक्ति को मिश्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम आर्यन दास था। प्रोजीरो मैक्स मूलर ने अपनी साइन ऑफ लैंग्वेज पुस्तक में लिखा है, फारसी लोगों ने आर्यवंशी परंपराओं को अधिक सुरक्षित रखा है। ये लोग भारत के उत्तर पश्चिम भाग से चलकर फारस में बसे थे।
उनके धर्म ग्रंथ जिंदावस्था में भारतीय धर्म दर्शन ही भरा पड़ा है। सर विलियम जोन्स ने अपनी भाषा शोध में इस बात की चर्चा की है कि जिंद कोश में 60-70% शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं। यहूदी लोग अपने को युदा की संतान कहते हैं।
यह वस्तुतः यदुवंश का संकेत है।
तातार लोग अपना आदि रूप अय को मानते हैं।
पुराणों के अनुसार राजा पुरूर्वा का पुत्र अय था। चीनियों के पुराण पुरुष हय हो हय सम्राट यदु के पौत्र थे। राजा सगर के आदेश से जिस पल्ली नगर के बसाए जाने का पुराणों में उल्लेख मिलता है उस पल्ली स्थान की संगति वर्तमान फिलिस्तीन से ठीक प्रकार बैठ जाती है। यहूदी धर्म की एक पुराण कथा के अनुसार पैगंबर एजेकील के समक्ष परमेश्वर ने गरुड़ पक्षी और सुदर्शन चक्र प्रकट किया था। यह विष्णु भगवान का प्रतीकात्मक उल्लेख है।
पश्चिमी एशिया में इराक और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जिनमें प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप रही है। इन देशों तक किसी जमाने में भारत की सीमाएं फैली हुई थीं।
10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान पर हिंदू राजा राज्य करते थे। डॉक्टर जीरो एडवर्ड डी जीरो सचिव द्वारा संपादित ग्रंथ अलबरूनी का भारत में अफगानिस्तान की प्राचीन इमारतों का उल्लेख है जिन्हें हिंदू राजाओं ने बनवाया था।
काबुल में महानुभावों के 3 प्राचीन मंदिर अभी भी विद्यमान हैं।
बामियान घाटी में एक चट्टान काटकर बनाई गई भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है।
उसी क्षेत्र की पहाड़ियों में एलोरा अजंता करता और माजा जैसी सुंदर प्रतिमाएं खुदी हुई मिलती हैं।
यहाँ के एक पुराने नगर का नाम है नगर हर अर्थात शिवजी का नगर।
अफगानिस्तान की भाषा पश्तो में संस्कृत शब्दों की भरमार है। पिछले 70 वर्षों में पश्चिमी एशिया में जो पुरातत्व अनुसंधान हुआ है उससे प्रकट होता है कि इस क्षेत्र में दूर दूर तक भारतीय सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं।
नॉर्वे के इतिहासवेता प्रो जीरो नूडिटसन, जर्मन पुरातत्व खोजी प्रो जीरो हुमा विकला तथा प्रो जीरो कटवेटल ने तुर्की का एक प्राचीन नगर हातुमा खोद निकाला जिसमें हिंदू मंदिरों के अवशेष तथा संस्कृत भाषा में खुदे कई शिलालेख मिले हैं।
इन शिलालेखों में वहां पर क्षेत्रीय शासकों का उल्लेख है। इतिहासवेता इस बात से सहमत हैं कि यह क्षेत्रीय शब्द भारत में प्रचलित क्षत्रिय शब्द का ही अपभ्रंश है।
एक राजा का नाम था परशुराम, उसके बेटे का नाम था लववर्ण। खुदाई से प्रमाण मिले हैं कि हातुमा E.0.0.1740 में आर्य देश के अंतर्गत था।
इसमें प्राचीन काल के देव मंदिर मूर्तियां तथा पूजा उपकरण निकले हैं।
इस नगर की आबादी उस समय 20,000 रही होगी।
इमारतों पर भारतीय शिल्प की पूरी छाप है।
इसी प्रकार 1937 E.0 की खुदाई में कुसारा नगर निकला तो उसमें भी इंद्र देवता की प्रतिमाएं तथा अन्य भारतीय कलाकृतियां निकली।
उपलब्ध शिलालेखों में वहां E.0.0.1800 में सिपात नामक भारतीय राजा के शासन की चर्चा है।
उसी क्षेत्र में कोशी काशी के शिलालेखों से इतिहासकार आर जीरो ग्रीष्मान ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरान के इस क्षेत्र में काश्यप ऋषि का वर्चस्व रहा है। ईरान में 7वीं सदी में हरवामनी नामक कुरुवंशी राजा का राज्य था। तब उसका राज्य विस्तार भारत तक जुड़ा हुआ था। दारियबाहु डेरियस नामक बादशाह अब से 2,500 वर्ष पूर्व हुआ है, उसका गहरा संबंध भारत के साथ था। ईरान के पुरातन शासक पहलवी कहलाते थे। वे भारत के पल्लव राजवंश से थे।
राजा लोग अपने नाम के आगे अभी शाह शब्द लगाते हैं। नेपाल के राजा राम शाह हुए हैं। शाह शब्द भारतीय क्षत्रिय परिवार में प्रयुक्त होता रहा है।
प्राचीन ईरान में अग्नि पूजा होती थी और हिंदू प्रथा परंपराएं प्रचलित थी। उस देश पर जब मुसलमानी आक्रमण हुए तो पारसी जाति के लोग वहां से भागकर भारत आए और यहां बस गए।
पारसी समाज में अग्नि पूजा अभी भी हिंदुओं के अग्निहोत्र की ही तरह प्रचलित है। ईरान के धर्मोत्सवों में हिंदू परंपरा के कितने ही चिन्ह पाए जाते हैं। चंदन का उपयोग और चौक पूर्णा पूर्णतया भारतीय परंपरा के अनुरूप हैं। ईरानी भाषा में भी संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इस्लाम स्वीकार करने से पूर्व ईरान में पारसी धर्म था और उनकी पुस्तक जिंदावस्था रही है। छंद का अपभ्रंश है, जिंद और वेद का वैस्ता हुआ है।
जिंदावस्ता अर्थात वेद मंत्रों का संग्रह।
जिंद भाषा में दो तिहाई शब्द संस्कृत के हैं।
इतिहासज्ञ डॉक्टर जीरो तारापोरवाला के अनुसार पारसी धर्म भाषा में ऋग्वेद के ही भाव भरे पड़े हैं। ईरानी जनता तब पुनर्जन्म पर विश्वास करती थी, श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र करती थी, पूजती थी और यज्ञोपवीत कुश्ती धारण करती थी। वहां भारतीय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था।
ईरान में बसे हुए पारसी लोग वस्तुतः भारत से ही गए थे। जर्मन विद्वान मैक्समुलर ने इस तथ्य को स्वीकारा है और भारतीय मूल के भारतीय सभ्यता के अनुयायी के रूप में प्रतिपादित किया है।
नमः जरदुस्त पारसी धर्म ग्रंथ में महर्षि व्यास हैं। जरदुस्त के संवाद एवं विचार विनिमय का वर्णन है। धर्मग्रंथ जिंदावस्था में अथर्ववेद का उल्लेख है।
उस देश में स का उच्चारण ह के रूप में होता रहा है। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो पारसी धर्म में प्रचलित देवताओं तथा धर्म परंपराओं में भाव सादृश्य ही नहीं, शब्द सादृश्य भी दिखाई पड़ता है। कितने ही संस्कृत शब्द तो भारतीय और पारसी धर्म में समान अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं।
यथा इष्टि, गाथा, गंधर्व, पशु, गौर, इशु, रथ, नमस्ते, यव्वा आदि। कहीं कहीं तो जिंदावस्था का यथा हिनोति एषम वाचम संस्कृत का यथा श्रृणोति एता वाचम में समानता है और विश्व दुख जगति वाक्य संस्कृत के विश्व दुखों जिनवति से मिलता जुलता है।
धर्म साहित्य में ऐसी भी समानताएं असाधारण रूप में देखी जा सकती हैं। सोमपान संबंधी मान्यता दोनों देशों में समान है।
हिंदू समाज में प्रचलित दर्शपौर्ण मासेष्टि यज्ञ, चातुर्मासेष्टि यज्ञ, प्रयुति स्टोम यज्ञ आदि की प्रथा भी समान स्तर की है। पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग नरक, वर्ण व्यवस्था आदि मान्यताओं में भी साम्य है। पारसी धर्म और हिंदू धर्म की तुलनात्मक समीक्षा करने पर दोनों का पुरातन आधार एक ही केंद्र पर केंद्रित हुआ स्पष्टतया परिलक्षित होता है। हदीसों में भारत को हिंदुस्तान जन्नत निशक अर्थात स्वर्गतुल्य भारत कहकर सम्मानित किया गया है। इब्ने जरीर, इब्ने अबी हतिम और हाकिम प्रभुति विद्वानों ने लिखा है, हजरत आदम ने स्वर्ग से धरती पर उतरने पर पहला कदम भारत के दक्षिणी भाग पर रखा था। इस क्षेत्र में पैदा होने वाले मसाले, सुगंधित द्रव्य, नींबू और केले हजरत आदम के साथ ही भारत में आए थे। सुवल तुल मृजान फी आरारे हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में कहा गया है कि हजरत आदम सबसे पहले हिंदुस्तान में उतरे और यहीं उन पर वही ईश्वरीय संदेश उतरा।
किताबुल अदली बुलम उरफरद के लेखक इमाम बुखारी ने ऐसे कई प्रमाण दिए हैं जिसमें ईसा की सातवीं शताब्दी में इराक और अरब में जाटों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी।
इस्लाम का एकेश्वरवाद का सिद्धांत व्यास के वेदांत सिद्धांत के प्रकाश में विकसित हुआ माना जाता है।
सूफी संप्रदाय पर वेदांत की गहरी छाप है। अरबी में वेदपा का तात्पर्य वेद व्यास को माना है और उन्हीं के महाभारत आदि पुराणों में वर्णित कथानकों एवं सिद्धांतों को वेदपा फिल हिकमत अर्थात वेदव्यास की बुद्धिमानी कहकर इंगित किया गया है। अरबी में संस्कृत शब्दों की उसके अपभ्रंशों की भरमार है।
इस भाषा प्रभाव को देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय उस क्षेत्र में संस्कृत का प्रचलन रहा होगा और स्थानीय भाषा के सम्मिश्रण से अरबी का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ होगा।
अरब के प्राचीन साहित्य में ऐसे अरबी अनुवादों की भरमार है जो भारत के ग्रंथों से अनुदित किए गए हैं। इन पुस्तकों में ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक पक्ष वाले भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करके वहां के भाषा भंडार की श्री समृद्धि की गई है।
जिस प्रकार चीनी यात्री समय समय पर यहां धर्म शिक्षा तथा ज्ञान संपदा संपादित करने के लिए आते रहे हैं, उसी प्रकार अरब शिक्षार्थी भी भारत आए थे। अलबरूनी भारत में 40 वर्ष रहा। यहां उसने संस्कृत पढ़ी तथा संस्कृत का अध्ययन किया।
उसने अपने अनुभवों को किताबुल हिंद तथा कानून मजूदीक में उल्लेख किया है।
बसरा निवासी दार्शनिक जाहिज ने अपनी पुस्तक गोरी और काली जातियों का तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय ज्ञान विज्ञान और रहन सहन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अरब इतिहासकार याकूबी ने भारत के हर क्षेत्र में बड़े चढ़े ज्ञान की गरिमा को मुक्तकंठ से सराहा है।
अरबों ने अंकगणित भारत से सीखा, इसलिए अंकों की हिंदसा कहा जाता है। भारतीय ग्रह गणित संबंधी ग्रंथों का अनुवाद भी अरबी में हुआ है।
बृहस्पति सिद्धांत का इससिद्ध हिंद आर्यभट्ट का आजवंद खंडक खाद्य का अरकंद नाम से अनुवाद हुआ है। खलीफा मंसूर के समय से भारतीय ज्योतिषी की वहां के राज दरबार में नियुक्ति होती थी। खलीफा मवक्फिक विल्लाह अब्बासी ने एक दल भारत में चिकित्सा विज्ञान एवं जड़ी बूटी उत्पादन की शिक्षा लेने के लिए भेजा था।
इन दहन नामक अरब विद्वान ने संस्कृत से अरबी में अनेकों आयुर्वेद ग्रंथों का अनुवाद करा के उस देश के निवासियों को लाभान्वित किया।
प्रधानमंत्री खालिया बरामकी ने सुश्रुत का अनुवाद कराया और उसे ससरो नाम दिया। इसी प्रकार चरक का भी अनुवाद हुआ। आयुर्वेद वेता शानक रुसा राय लिखित ग्रंथ भी अरब जनता के लिए उसी काल में उपलब्ध किए गए। अरब प्रधानमंत्री यहिया वरमकी ने फिर एक दल भारत भेजा जो यहां धर्म तथा चिकित्सा संबंधी जानकारियां संग्रह करके वहां के लोगों के लिए उपलब्ध करें। ऐसे ही शोधकर्ताओं में यरूशलेम का एक विद्वान लेखक मुथेमर भी था, जिसने अपनी पुस्तक किताबुल विद व तारीख में तत्कालीन भारत की धार्मिक स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन लिखा है। उसने इस देश के उपासकों के जल भक्तीय अर्थात अभिषेक, तर्पण, अर्ध्य, तीर्थ स्नान आदि के प्रमुखता वाले और अग्निहोत्रीय अर्थात अग्निहोत्री यज्ञ धर्म के दो भागों में विभक्त किया है। उन दिनों यहाँ ऐसे ही कर्मकांड का प्रधानतया प्रचलन था। अबूजैद सेराफी ने भारत की स्थिति का जैसा उल्लेख किया है, उससे प्रतीत होता है कि वह भी यहाँ की स्थिति को आंखों से देखने आया होगा। अरबी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बीजासफ, इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, साथ ही बौद्ध सत्व के जन्म, चरित्र, शिक्षा, मृत्यु आदि का वर्णन है।
उसे इस्लाम धर्मानुयायियों का एक वर्ग अभी भी धर्म ग्रंथ के रूप में मानता है।
इसके कुछ अध्याय प्रसिद्ध अरबी धर्म ग्रंथ इख्वानुस सफा में सम्मिलित किए गए हैं। पुस्तक का नाम बीजासफ वस्तुतः बोधि सत्व का ही अपभ्रंश है।
पुरानी फारसी में घ के स्थान पर ज का उच्चारण होता भी रहा है।
बोधि का बीज हो जाना इस दृष्टि से सामान्य बात है।
अरबी भाषा में अनेकों संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद हुआ है।
महाभारत की कथाओं का अनुवाद अबू साला बिन शुएब ने किया। इसका ईरानी उत्था मुजम्मिल उत्वारीख नाम से पेरिस पुस्तकालय में सुरक्षित है।
इन नदीम की किताबुल फहरिस्त में उल्लेख मिलता है कि शानाक और वाकर नामक भारतीय विद्वानों ने कितने ही संस्कृत के राजनीतिक तथा तंत्र ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में किया।
अरबी का कलेला दमना ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, जिसे 9वीं शताब्दी में अब्दुल्ला विमुखफा ने संपन्न किया था। उसी का पद्यानुवाद महाकबू अफवान ने किया था और राज्य पुरस्कार पाया था। चीन के एशिया में चीनी यात्री प्रहुइंसान के अनुसार सन 630 में वर्तमान अफगानिस्तान का गांधार प्रदेश भारतीय क्षत्रिय राजाओं के शासन का अंग था।
अभी भी काबुल में 22 हिंदू मंदिर हैं।
वैरागी, उदासी, नाथ और सन्यासी संप्रदाय वाले साधुओं के मठ वहां अभी भी मौजूद हैं।
वहां की पश्तो भाषा में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है।
इस देश को महावैयाकरण पाणिनि की जन्मभूमि माना जाता है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार प्रदेश की ही राजकुमारी थी। काबुल नदी के तट पर बसा काबुल नगर अफगानिस्तान की अति प्राचीन राजधानी है। उसका पुराना नाम आर्यान है, आर्यान अर्थात आर्य लोगों का निवास क्षेत्र। यहाँ आर्य, बौद्ध और यवन संस्कृतियों के महत्वपूर्ण भग्नावशेष सुरक्षित हैं। काबुल की पुरानी बस्ती पुराने ढंग की बसी है, किंतु नई काबुल रूस और अमेरिका की तरह विशालकाय, गगनचुंबी और साफ सुथरी बनी हुई है। स्त्रियां बहुमूल्य कालीनों के निर्माण में लगी हुई मोहल्ले मोहल्ले देखी जा सकती हैं।
नादिरशाह का मजार और करगाह झील दर्शकों के आकर्षण का केंद्र हैं। कहते हैं कि नादिरशाह भारत को लूटकर वापस जा रहा था तो यही रास्ते में उसका अंत हो गया था। शहर से 25 किलोमीटर दूर करगाह झील बहुत ही सुंदर है। लोग उसमें नौक विहार करते हैं। तटवर्ती छोटे छोटे होटलों में बिछी बेंचों पर बैठकर इस झील का मनोहर दृश्य अच्छी तरह देखा जा सकता है। कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत भाषा के अध्ययन का प्रबंध है।
उच्च वर्ग की स्त्रियां पूरी मेहनती हैं। स्कूली लड़कियां ही फिराक पहने दिखती हैं।
वयस्क स्त्रियां को पर्दे में रहना पड़ता है।
हाँ, गरीब वर्ग की स्त्रियां मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मुंह खोले हुए काम करती दिखाई देती पड़ती हैं।
भाषा पश्तो है पर उस पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। अच्छी उर्दू जानने वाला यहाँ के लोगों की बातचीत सुनकर उसका मोटा अर्थ तो समझ ही सकता है। इस्लाम के उद्भव और विस्तार की जन्मभूमि अरब है। अरब देश में इस्लाम के अवतरण से पूर्व बौद्ध धर्म प्रचलित था, उसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं।
हदीसों के अनुसार हजरत आदम जब धरती पर आए तो उन्होंने पहला चरण पृथ्वी के स्वर्ग भारत में रखा और दूसरा चरण अरब में। लंका उन दिनों भारत का ही अंग था। लंका में आदम पीक नामक स्थान अभी भी हजरत आदम के अवतरण का स्थल माना जाता है और मुसलमान वहां भक्तिपूर्वक नमन करने जाते हैं।
अरब देश में एक प्रतिभाशाली वंशवरामका की महत्वपूर्ण हलचलों का वर्णन वहां के इतिहास में मिलता है। इस वंश के लोगों को अरब शासन में मंत्री पद तक प्राप्त था।
यह वंश अग्निहोत्री था। उन्होंने बलख में नौ विहार एवं अग्नि मंदिर बनवाया था।
सन 651 में मुसलमानी आक्रमण में यह मंदिर गिराया गया और उसके अनुयायियों को पकड़कर दशमिक ले जाया गया, जहां वे मुसलमान बन गए।
वरामका वंश के विभिन्न व्यक्तियों ने अब्बासी खलीफा सफूफा से लेकर पांचवें खलीफा हारून रशीद तक अरब की शासन सत्ता अपने हाथ में रखी और वे मंत्री कहलाते थे।
सिंघासनारूर दूसरे थे, पर उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता इतनी तीखी थी कि प्रकारांतर में सारा शासन उन्हीं को देखना पड़ता था।
अरब इतिहास लेखकों के अनुसार उनका शासन हर दृष्टि से आदर्श था।
जितनी सर्वतोमुखी प्रगति उनके जमाने में हुई, इतनी इस क्रम में अन्य किसी काल में नहीं देखी गई।
यही कारण था कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन सत्ता का सूत्र संचालन करने में अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हुए मंत्री के पद का उत्तरदायित्व वहन करते रहे। बुरहान काते की तारीख जियाए वर्नी रोजुतुसिफा पुस्तक के अनुसार वरम का जाति अग्नि पूजक थी। बलख में उन्होंने अग्नि मंदिर बनाया था। उस मंदिर के पुजारी भी वे ही लोग थे।
सन 651 में मुसलमानी आक्रमण ने इस मंदिर का सफाया कर दिया और वराम का लोग इस्लाम के अनुयायी बन गए।
नौविहार के बारे एलूत फकी हमदानी ने लिखा है, इस विहार के बनाने वाले वरम का लोग थे। वे मूर्ति पूजक थे। मक्का और कुरेश के धर्म मंदिर की प्रतिद्वंद्विता में उन्होंने वैसा ही यह नया मंदिर बनाने का प्रयत्न किया। इसका गुंबद 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा था। 360 पुजारियों का निवास स्थान इसमें था। वर्ष में एक दिन ही एक पुजारी पूजा करता था। किताबुल बुल्दान के अनुसार वर्मिक का अर्थ है पुजारी।
यह लोग पुजारियों के वंशज थे।
चीन और काबुल के बादशाह इन्हीं का धर्म मानते थे और वे लोग यहाँ पर आकर स्थापित विशाल मूर्तियों के दर्शन अर्चन करते थे।
इतिहासकार कजवीनी के अनुसार यह मंदिर उस काल के देवालयों में सबसे बड़ा था।
रेशमी वस्त्रों और रत्न जटित आभूषणों में मूर्तियों की सज्जा होती थी। फारस वाले और तुर्क लोग यहाँ श्रद्धापूर्वक दर्शन करने आते थे और भेंट दक्षिणा चढ़ाते थे। प्रोजीरो ब्राउन ने अपनी पुस्तक लिटररी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में इस देवालय को ऐसे अग्नि मंदिर के रूप में अंकित किया है जहां अग्निहोत्र की मान्यता थी।
जखाओ की किताबुल हिंद में इसे बौद्ध विहार बताया गया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में भी बुद्ध विहार होने की चर्चा है।
इतिहासकार मसऊद ने नौ विहार के ऊंचे शिखर पर हरे रेशमी झंडे लहराते रहने का उल्लेख किया है।
इब्नुल फकीह ने इस विशाल मंदिर में स्थापित मूर्तियों का वर्णन किया है और लिखा है उसमें 360 पुजारियों के रहने के अलग अलग कक्ष थे। चीन, काबुल और भारत के राजा भी इस मंदिर के पुजारियों वाला धर्मवर्मिक ब्रह्म धर्म मानते थे और वे यहाँ पूजा करने तथा मस्तक झुकाने आते थे। इतिहास लेखक याकूब ने उमर बिन अजाक किरमानी का हवाला देते हुए इस नौ विहार का लगभग ऐसा ही वर्णन किया है और लिखा है कि इस मूर्ति पूजक धर्म के अनुयायी बराम का लोगों का बलख तथा देश के दूसरे स्थानों पर बड़ा सम्मान था। एक दूसरे इतिहास लेखक कजवीनी ने अपने वर्णन में विहार को उस देश का सबसे बड़ा मंदिर लिखा है और उसके भीतर खड़ी सुंदर मूर्तियों की चर्चा की है।
अरब इतिहासकारों ने इस नौ विहार का जैसा वर्णन किया है उसके विवरणों को देखते हुए वह स्पष्टतः ऐसा बुद्ध विहार प्रतीत होता है जिस पर पुराने बौद्धिक भारतीय धर्म की छाप थी और उसमें अग्निहोत्र की भी व्यवस्था थी। W. वर्थाल ने अपने इस्लाम का विश्वकोश ग्रंथ में इसे बुद्ध विहार ही माना है। इसके प्रमुख द्वार पर भगवान बुद्ध के उपदेश खुदे थे और बुद्धि संतोष और समृद्धि की उपयोगिता बताई गई थी। न केवल बलख वरन पूरे खुरासान क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रसार प्रभाव रहता था। इसकी चर्चा करते हुए इतिहासकार इब्नदीन ने लिखा है कि खुरासान क्षेत्र में इस्लाम आने से पूर्व बुद्ध धर्म का ही आधिपत्य था। अरबी विश्वकोश मसालिकुल इब्सार फी ममालिकिल अक्सर के प्रथम खंड में बलख के नौ विहार का वर्णन है और लिखा है कि उसे मतोशहर नाम के एक भारतीय राजा ने बनवाया था।
इसमें ग्रह नक्षत्रों की पूजा भी होती थी। इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद भी वराम का वंश के लोगों का भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम शताब्दियों तक बना रहा। उन्होंने अनेक भारतीय ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में कराया और घरेलू जीवन में हिंदू धर्म की प्रथा परंपराएं अपनाए रखी।
अब्बासी खलीफाओं के समय अरब शासन में कई वराम का मंत्री थे। उन्होंने खलीफा को रजामंद करके भारत के कितने ही विद्वान पंडित बुलाए और बृहस्पति सिद्धांत आदि कितने संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया।
जब हारू रशीद बीमार पड़े और अरब के चिकित्सक इलाज में असफल रहे तो भारत से मनकाना वैद्य बुलाए गए और उनके प्राण बचाए।
इसी प्रकार खलीफा के एक भाई के असाध्य रोग को अच्छा करने के लिए भारतीय चिकित्सक को प्रचुर मार्ग व्यय खर्च करके बुलाया गया था और उसने उनके प्राण बचाए थे।
अरब से कई यात्री भारत की धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आते रहे हैं। उन्होंने यहाँ रहकर जो सीखा जाना उसका विस्तारपूर्वक वर्णन अपने ग्रंथों में किया है
ताकि उस देश के निवासी स्थिति का समुचित लाभ उठा सकें।
इन यात्री लेखकों में से कुछ के नाम और ग्रंथ इस प्रकार हैं।
1. सुलेमान सौदागर सम 0237 हिजरी, इसकी पुस्तक है सिलसिलतुत्तवारीख। 2. इब्ने खुरदावेजा सन 250 ही, पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक। 3. अबूजैद हसन सेराफी सन 64 हिजरी, पुस्तक। 4. अबूदुल्फ मुसदूर बिन मुहलहिल यमवी सन 331 ही में,
इसकी पुस्तक के कुछ पृष्ठ ही मिलते हैं जो जर्मनी में लैटिन अनुवाद समेत सन 1845 में छपे हैं। इसके उद्धरण कितने ही अरब इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में दिए हैं।
5. बुजुर्ग बिन शहरयार सन 300 हिजरी, पुस्तक अजायबुल हिंद। 6. मसरिदियबुल हसन अली सन 303 हिजरी, पुस्तके मुरुजुज महाव मादनुल जोहरी उल तरबीह वाल अशराफ। 7. इस्तक्रियबु इसहाक इब्राहिम बिन मोहम्मद, पुस्तकें किताबुल अकालीम, किताबुल मसातिकुल, मसातिकुल ममालिक, 8 इबन होकल, सन 331 हिजरी। इसकी पुस्तक के कुछ पृष्ठ ही इतिहासकार इलियट को अवध के शाही पुस्तकालय में मिले थे। 9 बुशारी मुकसदी शेमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बुशरी, सन 375 हिजरी। पुस्तक अहसनूत तफासिया फी मारफतिल अकालिया। 10 अलबरूनी, सन 400 हिजरी। पुस्तक किताबुल हिंद। 11 इबन बतूता, सन 779 हिजरी। पुस्तक अजायबुल आसफार।
यह वे लोग हैं जिन्होंने भारत आकर आंखों देखा हाल लिखा है, जो यहां स्वयं नहीं आए पर जिन्होंने प्रामाणिक सूत्रों से तत्कालीन भारत की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ लिखे हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है।
विलाजुरी 275 हिजरी की फुतूहल बुल्दान। इबन नदीम बगदादी 370 हिजरी की किताबुल फहरिस्त। सूफी दामिश्की 728 हिजरी की अजायबुल वई वल बहर। जकरिया कजवीनी 682 हिजरी की असारुल विलाद। अबुल फिदा 732 हिजरी की तकवीमुल बुर्दान। याकूत 627 हिजरी की मुअज्जमुल बुल्दान। नवीरी 733 हिजरी की नहायतुल रफ़ी इफ़नुगुल अदब। माशाहबुद्दीन उमरी 747 हिजरी की मसालिकुल इफ़सार। पुस्तकें भी कम महत्व की नहीं है।
यह सभी लेखक अरब, इराक, ईरान, सिसली, मिश्र आदि अरब देशों के हैं और उनने अपने समय में जो कुछ लिखा है वह उनकी जानकारी के हिसाब से बिना अत्युक्ति का ही माना जा सकता है। उन उल्लेखों में भारत की तत्कालीन परंपराओं की सराहना की गई है। इन ग्रंथों से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के लोग पारस्परिक कलह में किस प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाने में निरत थे और एक दूसरे के प्रति किस तरह दुर्भिसंधियां रच रहे थे।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त ग्रंथ प्राचीन भारत की रिद्धि एवं गरिमा पर भी प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि जनसाधारण में धर्मनिष्ठा और नैतिकता के आदर्श बहुत ऊंचे थे। अरब देशों से जो शिक्षार्थी और अर्थार्थी विद्याध्ययन अथवा व्यवसाय के लिए वहां पहुंचते थे, उन्हें समुचित आतिथ्य एवं सहकार प्रदान किया जाता था।
अरब देशों के साथ चिरकाल से भारत के बड़े घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध चले आ रहे थे।
कटुता तो आक्रमण और आधिपत्य की चीज के साथ पनपी। धर्म यहाँ ऐच्छिक विषय था, कटुता तो बल प्रयोग ने उत्पन्न की।
मेसोपोटामिया किसी जमाने में भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। उस प्रदेश में भारतवासी ही जाकर बसे थे।
इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है कि यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियों की सुविस्तृत घाटी में सुमेर नामक एक सुसंस्कृत जाति बसी हुई थी। वे लोग भारत से ईरान होते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे थे और इरिदु बंदरगाह के निकट अपनी बस्तियां तथा शासन व्यवस्था कायम की। पहला राजा था उकुसी, यह इक्ष्वाकु शब्द का अपभ्रंश है।
महाभारत में भारत के एक प्रांत का नाम सुराष्ट्र और उसके निवासियों को सुवर्ण बताया गया है।
यह सुवर्ण सुमेर थे। सुमेर का अर्थ है अच्छी जाति। यही अर्थ सुवर्ण का भी होता है। उन दिनों भयंकर बाढ़ें आईं, भारी वर्षा हुई जिसमें सुमेर सभ्यता के महत्वपूर्ण दुर्ग धराशाय हो गए।
अब किश और उर क्षेत्रों की खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे उस क्षेत्र में बसी हुई सुमेर जाति की समुन्नत स्थिति का पता चलता है और प्रतीत होता है कि वे भारतीय धर्मानुयायी थे।
सूर्य पूजा करते थे। निशपुर में विशालकाय सूर्य मंदिर था। विष्णु वाहन गरुड़ की भी प्रतिमाएं उस क्षेत्र में मिली हैं। इक्ष्वाकु राजा की मुद्राएं भी उसी खुदाई में पाई गई हैं।
वोनजकोई नामक स्थान पर खुदी वरुण देवता की मूर्ति मिली है। रथ ठीक उसी प्रकार के पाए गए हैं जैसे कि भारत में चलते थे। मृतकों के दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं।
बोगजकोई की खुदाई में पुरातत्व अन्वेषी जर्मन संशोधक ह्यूगो विंकल का एक शिलालेख मिला है जिससे प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के स्थानीय भारतीय धर्मानुयायी मितानी वंशी राजा दशरथ ने भारतीय देवताओं को साक्षी देकर एक मैत्री संधि की। यह लेख ईसा से 1360 वर्ष पूर्व का है।
इसमें मित्र वरुण इंद्र और सत्य देवताओं की वंशावली भी मिली है जिसमें यश दत्त सुवर दत्त वीर दत्त अतर्तम सुरतन आदि भारत वंशी राजाओं के नाम हैं।
इतिहास वेता हडन वान लुशन चाइल्ड के अनुसार यह लोग नार्डिक वंश के आर्य लोग थे। वे काकेशियस पर्वत पार करके भारत से यहां आए थे और मितानी राज्य स्थापित किया था। मेसोपोटामिया की खुदाई में प्राप्त अवशेष और मोहनजोदड़ो की सिंधु सभ्यता सामग्री में भारी साम्य है।
दोनों की समानता देखते ही बनती है। मितानी भाषा में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शब्दों की भरमार है। एशिया माइनर के इसी क्षेत्र में एक और पुरातन वंश का विवरण मिलता है जिसे खती कहा गया है।
यह खत्री या क्षत्री शब्द का अपभ्रंश है। इन लोगों की प्रथम राजधानी तलहलफ थी।
इन क्षत्रिय राजाओं के जो सिक्के मिले हैं उन पर सिन्हारूर दुर्गा और वृषभारूर शिव की आकृति बनी है।
इसी खुदाई में शिव पार्वती की बालक स्कंद समेत प्रतिमा मिली है इकनियम में प्राप्त शिलालेखों से उस क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था प्रचलन तथा भारतीय भाषा का प्रसार सिद्ध होता है। ईसा के 1646 वर्ष पूर्व से लेकर 1180 वर्ष पूर्व तक 600 वर्षों से एशिया माइनर क्षेत्र में खत्री राजाओं का राज्य रहा है।
मीडिया और वेविलोन के बीच जगरस प्रदेश में इन्हीं लोगों का शासन था। इन्हें कसतर कहा जाता था,
जो क्षत्रि शब्द का ही अपभ्रंश है। असीरिया में मिले एक लेख के अनुसार एक क्षत्रि राजा अंजू या अंशु का उल्लेख है।
ईरान के यह क्षेत्र समीप पड़ता है,
इसलिए वहां की भाषा और सभ्यता का भी इन क्षत्रि या क्षत्रि लोगों पर प्रभाव था, किंतु बहुलता फिर भी भारतीयता की ही थी।
वे लोग भारत से ही गए थे।
सन 960 ईस्वी में मेसोपोटामिया इराक के विसरा नगर में इस्लाम धर्मानुयायियों में से एक संप्रदाय उभरा, अख्वानुस्सफा, जिसका अर्थ होता है पवित्र संप्रदाय। इसमें भारतीय दर्शन, आचार एवं उपनिषदों के तत्व ज्ञान का आश्चर्यजनक समावेश था।
उसमें हिंदुओं जैसा आश्रमों का विधान था।
50 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर इस संप्रदाय के लोग साधु जीवन में प्रवेश करते थे,
उपासनारत रहते थे और लोक शिक्षण के लिए परिभ्रमण करते थे।
इस संप्रदाय का साहित्य 50 खंडों में विभक्त था।
उसमें भारतीय धर्म विशेष रूप से और साधारणतया अन्य धर्मों में से भी जो कुछ मानवोपयोगी पाया गया उस सब का संकलन किया गया था।
इस साहित्य को रसाइल अख्वानुस्सफा अर्थात सदाशय मान्यता का साहित्य कहते थे। इसके संकलनकर्ताओं में जजानी, मुकद्दसी, अलेरोफी, इनरिफिस आदि धुरंधर विद्वान थे।
इस संप्रदाय में इस्लाम तथा अन्य धर्मों के ऋषियों तथा अवतारों का आदर करने तथा उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने का विधान था। मोहम्मद, इब्राहिम, ईसा, बुद्ध एवं ऋषियों के लिए उनने समुचित सम्मान प्रकट करने की मान्यता को प्रश्रय दिया था और ऐसे सर्वधर्म समन्वयी महापुरुष के अवतरण की प्रतीक्षा थी जो ईरानियों जैसा कुलीन, अरबों जैसा श्रद्धालु, इराकियों जैसा ज्ञानी, यहूदियों जैसा गंभीर, ईसाइयों जैसा प्रेमी, सीरिया वालों जैसा सरल, यूनानियों जैसा दार्शनिक, हिंदुओं जैसा तत्वदर्शी और सूफियों जैसा संत हो।
उस धर्म का प्रयोजन संसार के समस्त धर्मों और वर्गों के श्रेष्ठ तत्वों का संग्रह करके एक सारग्रही सत्यान्वेषी सार्वभौम पवित्र धर्म की स्थापना था। इतिहास के विद्यार्थी फिनिशियन लोगों की जीवट, पुरुषार्थ परायणता और संस्कृति से भलीभांति परिचित हैं। किसी समय यह लोग संसार के कुशलतम और सफलतम व्यापारी समझे जाते थे। फिनिशियन द्वीप समूह, सिडन, टायर आदि इन्हीं लोगों की बस्तियां थी। आक्रमणकारी इन्हें बार बार लूटते रहे, किंतु उन्होंने फिर से उसकी क्षतिपूर्ति कर ली और यथावत बने रहे।
इन्हें रोमन इतिहास में प्यूनिक कहा गया है।
यह जाति वस्तुतः भारत की पनी वंशीय लोगों की ही विदेश जाने वाली एक शाखा थी। पनी का ही अपभ्रंश प्यूनिक है। निरुक्त में पनिवनिक भवित पनी को वनिक कहा गया है।
यह लोग व्यवसाय प्रयोजन के लिए भारत से ईरान गए थे।
वहां असुरक्षा देखकर वे लोग सीरिया के समुद्र तट पर जा बसे और उस क्षेत्र का नाम फिनिशिया रखा। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के द्वीप बसाए। कार्थेज भी उन्होंने बसाया। 600,000 जनसंख्या वाले कार्थेज का व्यवसाय अभी दक्षिण यूरोप के अनेक देशों को प्रभावित करता है। पनिवंशी फिनिशियनों की प्राचीन गाथा भारतीय सभ्यता की ही अनुकृति है। उनका धर्म ग्रंथ बलुस्पा ऋग्वेद का ही अनुवाद है।
अभी भी उनकी मान्यताएं और प्रथाएं बहुत कुछ भारतीय आदर्शों के अधिक समीप हैं। किसी समय पनिवंश के लोगों की सहायता से पश्चिमी एशिया, ग्रीस, गॉल, ब्रिटेन, नॉर्वे, अरब तथा सेमिटिक लोगों में भारतीय धर्म और संस्कृति का विस्तार संभव होता था। भारत से धर्म प्रचारकों को बुलाकर वे उन्हें उस क्षेत्र में दूर दूर तक भेजने के लिए सभी आवश्यक साधन जुटाते थे।
सीरिया पर ही 0-0-1500 में किसानी जाति के राजा राज्य करते थे। वे मूर्ति पूजक थे।
इस क्षेत्र में ऐसे शिलालेख और संधि पत्र मिले हैं जिनमें मित्र, वरुण, इंद्र आदि की आकृतियां खुदी हैं और संस्कृत भाषा में मित्रतापूर्वक रहने की प्रतिज्ञा है।
पैलेस्टाइन से 7वीं सदी में इसनीज नामक एक ऐसे संप्रदाय का उल्लेख मिलता है जिसके रीति रिवाज और विचार पूर्णतया हिंदू धर्म से मिलते जुलते थे।
उस संप्रदाय के संत भारतीय ऋषियों की तरह उपासनारत रहते थे और धर्म प्रचार करते थे। कुवैत के छोटे से इलाके में तेल का इतना बड़ा भंडार है जितना पूरे अमेरिका में भी नहीं है। सन 1899 में जिस संधि के आधार पर कुवैत का अलग अस्तित्व बना, उसको इराक ने बहुत समय तक माना ही नहीं।
इराक बार बार यही कहता रहा कि कुवैत हमारा एक अविच्छिन्न प्रांत है।
उसने राष्ट्र संघ में भी इस पृथकता के विरुद्ध शिकायत की थी और धमकी दी थी कि वह सेना भेजकर पृथकता को दूर करेगा।
इस पर ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज कुवैत की सुरक्षा के लिए भेज दिए।
उनका सामना कर सकने की क्षमता न होने के कारण इराक को अपना दावा छोड़ना पड़ा। कुवैत के शेख की आमदनी तेल से 15,000 पौंड दैनिक है। उनके पास बैंकों में जमा धन संसार के किसी भी धनी व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक है।
विद्वेष के दुष्परिणाम।
यह मानना सही नहीं है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपने बल पौरुष से इस देश पर विजय पाए और अधिकार जमाया। सच बात यह है कि हिंदुओं की फूट ने ही उन्हें आमंत्रित किया और प्रकट एवं अप्रकट सहयोग देकर उन्हें विजयी बनाया।
नित नए बरसाती मेंढकों की तरह उगने वाले संप्रदाय सांस्कृतिक एकता नष्ट कर रहे थे। भावनात्मक विकृतियों ने नैतिकता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता को एक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया था।
ऐसी दशा में लोगों को अपने वीराने दिखने लगे और वीराने अपने।
गृहकला से उत्पन्न विद्वेष ने आक्रमणकारियों की शरण ली, उन्हें आमंत्रित किया और भरपूर सहयोग दिया। इसी बल बूते पर उन्हें आक्रमण का साहस हुआ। जो सफलता सहज ही मिल सकती हो, उसका लाभ कौन छोड़ेगा।
दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले का लाभ ही लाभ है। इसी आकर्षण ने उन आक्रमणकारियों को पैर जमाने के लिए ललचाया जो मात्र लूट खसोट करके भाग जाने के अतिरिक्त और कुछ कभी सोचते भी न थे।
अंधकार युग की भारतीय पराधीनता के लिए किसी आक्रमणकारी को उतना श्रेय नहीं जितना इस देश में फैली फूट और तज्जनित आत्मघाती नीति को। जयचंद्र का नाम बदनाम है कि उसने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया था।
अंग्रेजों के जमाने में मीर जाफर का नाम कुख्यात है, पर वास्तविकता यह है कि उन दिनों इस स्तर की दुर्भिसंधि बरतने वाले अनेक लोग थे, भले ही उनका नाम प्रकाश में न आया हो। इन्हीं के प्रयासों ने इस देश को आक्रांताओं के पैरों तले चिरकाल तक कुचले जाने की भूमिका प्रस्तुत की।
तोहफतुल किराम नामक अरब इतिहास का उद्धरण है कि सिंध पर दल्लूराय नामक हिंदू राजा का राज्य था। इसने अपने छोटे भाई इमरान को सताया। वह बगदाद के खलीफा के पास पहुंचा। खलीफा ने उसके साथ अरब सेना भेज दी। सेना नायक सैयद को अपनी लड़की ब्याह कर दल्लूराय अपनी जान बचा सका।
अरबी भाषा के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ चचनामा में उल्लेख है, सिंध के कुछ पुरोहित मोहम्मद कासिम के पास गए और उनसे कहा कि हमारी जाति सबसे ऊंची है, हमें ऊंचा मान मिले।
कासिम ने उनकी बात मान ली, उन्हें ऊंचे पद दिए और संपन्नता दी। पुरोहितों ने इसका बहुत धन्यवाद दिया और गांव-गांव घूमकर शासकों के गुण गाए तथा उनकी भरपूर प्रशंसा की।
मुतधिर मुकद्दसी ने हिजरी सन 335 में हिंदुओं को दो प्रमुख धर्मों में बांटा है।
1. ब्राह्मण धर्म, 2. बौद्ध धर्म। दोनों परस्पर विरोधी थे। उनमें से ब्राह्मण धर्म वाले अरब लोगों के अधिक घनिष्ठ थे।
कामिल इबन अधीर के अनुसार सन 347 हिजरी के आसपास सिंध में मुसलमानों का पास पलट गया और उन्हें भागकर जान बचाने की आवश्यकता पड़ी। तब एक हिंदू राजा ने उन्हें अपने यहाँ बसाया और स्वागत किया और वे बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। कामिल इनौर के अनुसार भारत पर आक्रमण करने वाले सुल्तान महमूद की सेना में बहुत से हिंदू भी मिले हुए थे।
लगता है कि उस काल में बौद्ध धर्म का वर्चस्व ब्राह्मण धर्मानुयायियों को सहन नहीं हो रहा था।
वे स्वयं तो बौद्धों को नीचा दिखाने में सफल न हो सके, पर उन्होंने सरल तरकीब ढूंढ निकाली कि समीपवर्ती विधर्मियों को आक्रमण करने के लिए तैयार किया जाए।
इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार बनाई गई कि बौद्ध धर्म इस्लाम के अधिक विपरीत है, ब्राह्मणी धर्म इतना नहीं।
बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए दोनों मिलकर प्रयत्न करें तो इसमें दोनों के समान शत्रुओं को निरस्त करने का अवसर मिलेगा।
इस दुर्भिसंधि ने आक्रमणों के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाई, पर इतिहासकार बिलाजुरी के अनुसार उन दिनों बौद्धों और ब्राह्मणों में भारी लड़ाई चल रही थी।
ब्राह्मण तगड़े पड़ रहे थे।
बौद्धों ने अपने को हारता देखा तो उन्होंने मुसलमानों की सहायता मांगी।
मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब नेहरू पहुंची तो उसे मालूम पड़ा कि बौद्धों ने गुप्त रूप से अपने दूत इराक भेजे हैं और वहां से अभयदान प्राप्त किया है।
नेहरू में कासिम का अच्छा स्वागत हुआ, उसे रसद और दूसरी सुविधाएं मिली। इसके बाद इस्लामी सेना आगे बढ़ी,
इसमें बौद्धों का सहयोग मिला।
उन्होंने राजा विजय राज को छोड़कर मुसलमान सेना का साथ देना उचित समझा।
इतिहासकार इलियट ने उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए स्पष्ट किया है कि उन दिनों बौद्धों और ब्राह्मणों में भारी कलह मचा हुआ था। यद्यपि मतभेद दार्शनिक स्तर के और छोटे मोटे थे तो भी उनका द्वेष भाव बहुत बढ़ गया था और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरीका अपनाने के लिए उतारू थे।
यही निष्कर्ष अरबी इतिहास मिन्हाजुल मसालिक से भी निकलता है।
इबन नदीम की अल फहरिस्त के अनुसार अरबी भाषा में बौद्धों के लिए समनिया शब्द का प्रयोग होता है।
यह नास्तिक अथवा शैतान जैसा है।
इस्लाम के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करना सबसे बड़ा पाप है।
बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते।
इतना ही नहीं, उनकी अन्य कई दार्शनिक मान्यताएं भी इस्लाम के प्रतिकूल पड़ती हैं।
संसार में सत्य और असत्य का मिलाजुला होना, संसार को दुख रूप मानना, पाप पुण्यों का परिणाम, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानना, मूर्ति पूजा आदि ऐसे प्रतिपादन हैं जो इस्लाम से मेल नहीं खाते। अस्तु, इन्हें अधिक घृणास्पद समझा गया। यूं ये सिद्धांत बौद्ध धर्म में प्राचीन हिंदू धर्म से ही गए थे।
पर उस समय के प्रचलन के अनुसार विरोधी पक्ष ने इन्हें बौद्धों के ही ठहराया।
चचनामा में एक रहस्य का उद्घाटन किया गया है। सिंध में एक काका नामक कूटनीतिज्ञ साधु था। राजा और बड़े आदमी उसे चमत्कारी समझते थे और उससे सलाह लेते थे।
मुसलमानों के आक्रमणों का मुकाबला कैसे किया जाए, इस बात पर बड़े लोग उससे सलाह लेने गए तो उसने कहा, मैंने पंडितों, योगियों और देवताओं से सलाह करके यह जान लिया है कि इस देश को मुसलमान अवश्य जीत लेंगे।
मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होकर रहेगा।
इस कथन से उन लोगों में भारी निराशा छा गई और लड़ने का इरादा छोड़कर अपनी जान बचाने की बात सोचने लगे।
मोहम्मद बिन कासिम ने उसे भारी जागीर एवं सम्मान प्रदान किया।
काका के प्रभाव में आकर प्रभावशाली लोगों ने कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली।
ब्राह्मण धर्मानुयायी राजा और महंत मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दे रहे थे और उन्हें अपने यहाँ अनेकानेक सुविधाएं देकर बसा रहे थे। शारीरिक दृष्टि से अधिक बलिष्ठ और स्वभाव की दृष्टि से अधिक लड़ाकू होने के कारण इस प्रश्रय में उन्हें यह लाभ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि उनकी सहायता से विपक्षियों को तरह तरह से नीचा दिखाया जा सकता है।
बसे हुए अरब लोग अपने प्रभाव से अछूत तथा दूसरे पिछड़े लोगों को मुसलमान बना लेते थे।
इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, वरन इसे प्रोत्साहन दिया जाता था ताकि उन्हें अपनी मित्रता का अधिक गहरा प्रमाण दिया जा सके। इलियट ने अपने इतिहास ग्रंथ में तत्कालीन नौ मुसलमानों की स्थिति का वर्णन अमीर खुसरो का एक उदाहरण देते हुए लिखा है, यह लोग आधे हिंदू आधे मुसलमान थे।
इन्हें अपने इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं था।
इब्न बतूता ने कालीकट के राजा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, एक बार एक मुसलमान व्यापारी की तलवार दीवान के भतीजे ने छीन ली।
व्यापारी ने राजा से शिकायत की तो हुक्म हुआ कि दीवान के भतीजे के दो टुकड़े उसी तलवार से कर दिए जाएं।
उपरोक्त यात्री के अनुसार उन दिनों मैसूर राज्य पर वललाल देव राजा राज करता था।
उसने लिखा है, इस राजा की विशाल सेना में एक चौथाई मुसलमान थे। बीजानगर के हिंदू राज्य की सेना में 2000 मुसलमान थे। राजा मुसलमानों का बहुत आदर करता था।
उसने उनके लिए मस्जिद बनवाई थी। अरब यात्री सुलेमान का यात्रा विवरण खजायनुल फुतूह में छपा है।
उसने लिखा है, वल्लभी राजा और उसकी प्रजा मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु गुर्जर लोग अरबों के शत्रु हैं। एक अन्य अरब यात्री मसूदी भारत आया, गुजरात घूमा और उसने वल्लभी बल्हारा राजाओं के बारे में लिखा है कि उनके राज्य में मुसलमानों को इतना आदर होता था जितना सिंध अथवा भारत के किसी अन्य राजा के राज्य में नहीं होता। यहाँ इस्लाम का अच्छा आदर एवं संरक्षण है। अजायबुल हिंद में शहरयार नामक नाविक को साक्षी देते हैं लिखा है, भारत में कई प्रकार के पुजारी एवं सन्यासी हैं। इनमें से कुछ मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे घनिष्ठता बरतते हैं।
कैलाश मानसरोवर का शिव तीर्थ तिब्बत।
तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है।
भगवान शिव का निवास क्षेत्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर अब उसी प्रदेश में है। प्राचीन काल में यह भिन्नता न थी। हिमालय का उत्तराखंड गंगोत्री से लेकर कैलाश तक फैला हुआ था। योगी तपस्वी वहां निवास करते थे और तीर्थयात्री जाया ही करते थे। तब उस क्षेत्र में पूरी तरह भारतीय धर्म ही प्रचलित था।
समय के कुचक्र ने बहुत कुछ इधर उधर किया।
हृदय का संपर्क पेट से न रहे और रक्तवाहिनियां वहां तक प्रवाह जारी न रखें तो स्वभावतः लकवा मार जाएगा। भारत जब समस्त विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता को खो बैठा और विलासिता तथा स्वार्थपरता को अपना लिया तो फिर अपनी छोटी सी कोठरी को संभालना भी कठिन पड़ गया। तब उसी पर दूसरे लोग आक्रमण करके अधिकार जमाने लगे।
ऐसी हालत में दूसरे देशों में प्रकाश फैलाने का उत्तरदायित्व कौन संभालता? यदि संभाला न जाए तो सुरम्य उद्यान कुछ समय में झाड़ झंखाड़ों से भरा अंगड़ एवं अस्त व्यस्त हो जाता है।
समीपवर्ती देश भारत के सहयोग से वंचित होकर अपने अपने ढंग के बिखराव में फंस गए।
ऐसे ही प्रदेशों में एक भाग तिब्बत का भी है। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रवेश होने पर वह पुरानी कड़ी फिर से जुड़ गई।
बीच का विच्छेद काल बहुत लंबा रहा, फिर भी बौद्ध प्रचारकों ने वहां जाकर देखा कि हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताएं यहां किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं।
देव उपासना का क्रम भी प्रायः वैसा ही चल रहा है, यद्यपि उसमें विकृतियों की भरमार होने से अवांछनीय तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ गई थी।
बौद्ध धर्म के प्रयोग ने वहां नव जीवन का संचार किया और तिब्बत को फिर से भारत के समीप ला दिया। तिब्बत भौगोलिक दृष्टि से भारत के समीप है, किंतु बौद्ध धर्म वहां लंका, खोतान, चीन, कोरिया, जापान में धर्म विजय करने के पश्चात पहुंचा। इसका प्रधान कारण यातायात की कठिनाई मार्ग की अत्यंत दुर्मता ही थी।
जो पर्वत श्रृंखलाएं एवं सघन वन प्रदेश दोनों देशों को अलग करते थे, वे ऐसे जटिल थे कि उन्हें पार करना जीवन और मरण की प्रत्यक्ष चुनौती को स्वीकार करने के बराबर था।
उस देश में बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी में पहुंचा और उस प्रयत्न में प्रचारकों को असाधारण दुस्साहस का परिचय देना पड़ा। इसके पूर्व वहां बहुदेववादी बलि पूजक पानन धर्म का प्रचलन था। बौद्ध धर्म ने वहां प्रवेश किया। वे दोनों एक दूसरे से घुले मिले। दोनों ने अपना स्वरूप बदला और एक नए मध्यवर्ती धर्म का रूप धारण कर लिया। अभी भी वहां ऐसे धर्म का प्रचलन है जिसमें बौद्ध शिक्षा की प्रधानता है और पान धर्म का सम्मिश्रण है, तो कहीं इसके विपरीत ऐसे पान धर्म का प्रचार है जिसमें बौद्ध मान्यताएं भी गहराई तक मिली जुली हैं।
दक्षिणी पूर्वीय तिब्बत में बने चुंबी घाटी के चार विहार पान धर्म के हैं। बुद्ध मूर्तियां और अवतारी पद्मसंभव की मूर्तियां बौद्ध विहारों की तरह इनमें भी स्थापित हैं।
धर्म ग्रंथ भी अधिकतर मिलते जुलते ही हैं।
मतभेद इतना कम है कि देवताओं के पूजा विधानों और ग्रंथों के नामों में अंतर के अतिरिक्त और कोई बड़ी भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती। पान ओम मंत्रे सुये सलेदु मंत्र की उपासना करते हैं और बौद्ध उसी को ओम मणि पे में हुन उच्चारण के साथ जपते हैं। अर्थ दोनों का एक ही होता है।
यूं बौद्ध धर्म लंका, बर्मा, मेसोपोटामिया, मेसिडोनिया और मिश्र आदि में ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में ही पहुंच चुका था। सन 56 में मध्य एशिया के खोतान प्रांत में भी फूलने फूलने लगा था।
सन 372 में कोरिया को और 538 में जापान को उसने प्रभावित कर लिया था, पर भारत की सीमा से लगे हुए तिब्बत में वह सन 580 के पहले न पहुंच सका।
उसका एक कारण तो मार्ग की दुर्गमता था और दूसरा उस क्षेत्र के लोगों में समव्याप्त शिक्षा और पूर्व मान्यताओं के प्रति अंधविश्वास भरी कट्टरता था। द रिलीजन ऑफ तिब्बत ग्रंथ के अनुसार बौद्ध प्रचारकों ने चतुर्थ शताब्दी में वहां धर्म विजय का प्रकाश पहुंचाने का प्रयत्न किया था, पर वहां निरक्षरता का साम्राज्य होने से विशेष सफलता न मिली।
राजा से लेकर प्रजा तक किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। लोसेम सो और लितिसे आदि विद्वानों को इसी कठिनाई से हार मानकर पीछे लौटना पड़ा।
सन 629 में तिब्बत की गद्दी पर सुंगहिंग गंपो बैठा। उसने अपने पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म की उत्साह भरी चर्चा सुनी। उसका लाभ लेने के लिए उसका भी जी चाहा। अस्तु अपने प्रतिभाशाली कर्मचारी तानमिस वोता के नेतृत्व में 16 कुशाग्र बुद्धिमान व्यक्तियों का जत्था भारतीय भाषा और बौद्ध धर्म सीखने के लिए भारत भेजा। वह जत्था 18 वर्ष भारत में रहा। यहां उसने तिब्बत के लिए भारतीय वर्णमाला के अनुरूप एक लिपि तैयार की। करंट व्यू सूत्र और अवलोकितेश्वर सूत्र उसी भाषा तथा लिपि में लिखे। इस तिब्बती लिपि का नाम हरहा रखा और भाषा का तानमी पाणिनि के आधार पर व्याकरण बनाया। दल ने वापस तिब्बत लौटकर राजा प्रजा को लिखना पढ़ना सिखाया, बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों से परिचय कराया। तत्कालीन बौद्ध सम्राट सुंगहेंग गंपो बड़ा प्रतापी था। उसने चीन और नेपाल पर चढ़ाया की। इसका सिलसिला तब टूटा जब चीन और नेपाल नरेशों की पुत्रियां उसे वधू रूप में प्राप्त हो गईं। वे दोनों बौद्ध थीं।
उनके प्रभाव में आकर राजा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसने पड़ोसी देशों से बौद्ध धर्म प्रचारक बुलाए और कितने ही मंदिर और विहार बनवाए।
लासा राजधानी की उसी ने स्थापना की।
उपलब्ध प्राचीन चित्रों में सम्राट सोन को धर्मचक्र प्रवर्तक शासक के रूप में चित्रित किया गया है।
प्रजा उसे अवतार मानती थी। उसके वंश के राजा त्रिदेशक तेन और ती सोंग दे सेन ने भी इस दिशा में प्रयत्न किए, पर पुरातन पान धर्मों प्रजा और सरकारी अधिकारियों के विरोध तथा असहयोग के कारण उसमें विशेष सफलता न मिल सकी।
इस अवधि में भी कुछ विहार बने और प्रचार जारी रहा। तिब्बत का प्रामाणिक इतिहास, जिसके आधार पर उस देश की बौद्ध परंपराओं को ठीक से समझा जा सके, सन 580 से आरंभ होता है।
इसे सन 763 तक खींच ले चले तो वर्गीकरण की दृष्टि से यह आरंभ युग कहा जाएगा।
इसी बीच में भारत में शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से तिब्बती लिपि भाषा व्याकरण की रचना की गई। लोह पर्वत की सुरम्य गुफा में बैठकर विद्वानों ने यह कार्य 4 वर्ष में पूरा किया।
यहीं से तिब्बत का सर्वतोमुखी विकास आरंभ होता है। वास्तुकला शिल्प व्यवसाय धर्म राजनीति शिक्षा चिकित्सा यातायात की अनेकों अभिनव योजनाएं चल पड़ी। इसी अवधि में भारत से बौद्ध विद्वान कुमार, नेपाल से मंजूशील, काश्मीर से तुन, चीन से महादेव थौमिन धर्मकोश वहां पहुंचे। थौमिन ने तिब्बती भाषा में करंट व्यू सूत्र रत्नमेघ सूत्र कर्मशतक आदि 8 ग्रंथों का अनुवाद किया। अन्य विद्वानों ने तिब्बतियों को अन्यान्य विषयों का ज्ञान देने वाली पुस्तकें लिखी। सम्राट सुंग वचन ने 62 वर्ष राज्य करके 82 वर्ष की आयु में सलभी नामक स्थान में शरीर त्यागा। उस स्थान पर एक विशाल बौद्ध मंदिर बनाया गया। इसके बाद सन 638 से 652 तक मंग सोंग का और 670 से 742 तक गचन वर्तन का शासन रहा।
इसके समय में वाणी और लेखनी से भिक्षुगण बौद्ध धर्म की जड़ जमाने में मंथर गति से लगे रहे। उन परिस्थितियों में तीव्र गति से सफलता मिलने की आशा भी नहीं की जा सकती थी।
सन 742 से 785 तक सम्राट किसोंग का शासन रहा। उसने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उत्साह दिखाया,
पर पुरातन पंथी मंत्रियों के उस विरोध के कारण उसे अपना हाथ रोकना पड़ा। तो भी उसने दो चीनी भिक्षुओं तथा एक काश्मीरी पंडित अनंत को उस कार्य में लगाए रखा।
इसी समय एक तिब्बती भिक्षु ज्ञानेंद्र का उत्साह उमड़ा। वह अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया। वह बोधगया का दर्शन करने के उपरांत नालंदा पहुंचा और वहां अध्ययन किया। उन दिनों तिब्बत और भारत का मार्ग नेपाल और मंगयुल होकर ही था।
ज्ञानेंद्र की भेंट भारतीय विद्वान शांतिरक्षित से मंगयुल में ही हुई थी।
उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। सम्राट को सहमत करके ज्ञानेंद्र फिर मंगयुल लौटा और आचार्य शांति रक्षित को सहमत करके धर्म प्रचार के लिए तिब्बत ले गया।
वे प्रसन्नतापूर्वक आए और वहां पहले से ही रहते हुए काश्मीरी भिक्षु अनंत के सहयोग से तिब्बत में लेखनी तथा वाणी से कार्य करने लगे। शांतिरक्षित संस्कृत में बोलते थे और अनंत उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया करते थे।
इस प्रकार भाषा संबंधी कठिनाई दूर हुई और शांतिरक्षित ने राजपरिवार को बौद्ध धर्म के प्रति अधिक श्रद्धावान तथा सहयोगी बना दिया। वह दीक्षावान बौद्ध हो गया।
इन प्रसार कार्यों में अधिकारियों और प्रजाजनों ने विरोध भी बहुत किया, यहाँ तक कि एक बार शांति रक्षित को तिब्बत छोड़ने के लिए भी विवश होना पड़ा, परंतु परिस्थितियां शांत होते ही वे फिर लौट आए और 75 वर्ष की वृद्धावस्था में भी वे नवयुवकों जैसे उत्साह से धर्म प्रचार करते रहे।
उन्होंने अपना स्थायी आश्रम संपे स्थान पर बनाया। योजनाबद्ध प्रक्रिया अपनाकर उन दिनों महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए गए। 762 से विशाल बौद्ध विहार वसुम यश का निर्माण आरंभ हुआ, जो 12 वर्ष तक बनता रहा और 775 में पूरा हुआ।
इसमें भिक्षुओं के निवास शिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था की गई।
12 भिक्षुओं ने इस संस्था के संचालन का भार संभाला, इनमें 5 भारतीय और 7 तिब्बती थे। यहाँ अनेक धर्म ग्रंथों का अनुवाद हुआ। 100 वर्ष की पूर्णायु पूरी करके शांति रक्षित सन 780 में स्वर्ग सिधारे। उनके अवशेष की सम्मानपूर्ण स्थापना हुई और वहां एक ऊंचा स्तूप बनाया गया।
तिब्बती उन्हें महापंडित और बोधिसत्व के नाम से स्मरण करते हैं।
आचार्य शांतिरक्षित के बाद उनके शिष्य श्रीघोष संगनायक बने।
इस काल में भी भारतीय विद्वान तिब्बत जाते रहे,
साथ ही चीनी बौद्ध प्रचारकों के जत्थे भी आते चले गए।
इन भारतीय और चीनी प्रचारकों में जातीय मनोमालिन्य का विष फैला और उसने कर्मवादी एवं अकर्मवादी सिद्धांतों की आड़ में उस विवाद को विद्वेष एवं कलह का रूप दे दिया। अंत में इस विवाद को निपटाने के लिए सम्राट की अध्यक्षता में एक शास्त्रार्थ आयोजित किया गया।
एक ओर चीनी भिक्षु हविशन के नेतृत्व में अकर्मण्यतावादियों का दल था, दूसरी ओर कमलशील के नेतृत्व में भारतीय कर्मवादी उपस्थित हुए। शास्त्रार्थ कई दिन चला,
उसमें भारतीयों की विजय हुई।
निश्चित शर्त के अनुसार हविशंग अपने हाथों कमलशील के गले में माला पहनाकर उस देश से निर्वासित हो गए।
इस पराजय से चीनियों की द्वेषाग्नि और भी भड़की।
उन्होंने 4 कसाई भेजकर आचार्य कमलशील की हत्या करा डाली। ऐसे आतंक भरे समय में भी बुद्ध संघ में विमल मित्र, बुद्ध गुह्य, शांति गर्भ, नर्म मख, शाक्या प्रभु, रिंचोन सेद, नर्म पर मितोगप आदि विद्वान वाणी और लेखनी के माध्यम से तिब्बती जनता को बुद्ध संदेश सुनाने में निरत रहे और धर्म चक्र प्रवर्तन में शिथिलता नहीं आने दी। सन 785-86 में 2 वर्ष तक मुनि वचनपुर शासनाध्यक्ष रहा। उसने बुद्ध दर्शन को आर्थिक क्षेत्र में भी उतारने का प्रयत्न किया,
धन का समवितरण कराया, धनियों को गरीबों के लिए दान देने के लिए विवश किया,
पर श्रम का सम महत्व न होने से उस प्रयोजन का स्थायी परिणाम न निकला। मुफ्त का धन पाकर दरिद्रों ने बेरहमी से उसे उड़ा डाला।
दूसरी ओर धनियों के हाथ में उपार्जन के साधनों का एकाधिकार रहने से वे फिर पहले जैसे ही धनी बन गए।
पूजा तक धर्म सीमित न रखकर उसे अर्थ क्षेत्र में उतारा जाए, यह सामर्थ्यवान लोगों को सहन न हुआ और उस उदार सम्राट की विष देकर हत्या कर दी गई। सन 787 से 817 तक मुनि वचन पो के भाई खिलदे वचन का शासनकाल रहा। उसने भी बौद्ध धर्म में अपने पूर्वजों की भांति ही निष्ठा रखी। बल्तिस्तान क्षेत्र के सकरदो नगर में एक अच्छा बुद्ध मंदिर बनवाया, अनुवाद की सुव्यवस्था की, भाषा संबंधी प्रचलित दोषों का संशोधन कराया। राजाश्रय पाकर जिनमित्र सुरेंद्र बोधि, रत्नेन्द्रशील, मंजुश्री धर्म, जयरक्षित, ज्ञानसेन, धर्मताशील, रत्नरक्षित, बोधिमित्र, दानशील, शैलेन्द्र बोधि आदि भिक्षुओं ने बौद्ध साहित्य का तिब्बती भाषा में सृजन किया और धर्म प्रेरणा का अभियान जनमानस तक पहुंचाया। सन 817 से 847 तक रत्न पंचन का शासनकाल रहा। यह राजा अति भावुक था। उसने भिक्षुओं को देवतुल्य सम्मान दिया, यहां तक कि शासन व्यवस्था तक उनके हाथ सौंप दी। उसने अपने पुत्र चंगमो को भिक्षु बना दिया। उससे तत्कालीन राजदरबार असंतुष्ट हो गया और उसने सम्राट को मार डाला, रानी ने आत्महत्या कर ली। तब बौद्ध द्वेषी गुलंग दर को गद्दी पर बिठाया। उसने भिक्षुओं को बहुत सताया, बदनाम किया। उस उत्पीड़न से संतुष्ट होकर भिक्षु पड़ोसी राज्यों में भाग गए। स्थिति असह्य हो गई तो लहलुंग नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे भी तीर से मार डाला और स्वयं भाग गया। इसके बाद 900